खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं चाहता हूं कि आज इस यादगारी की इबादत में एक वाकया पढ़ा जाए जो एक चरवाहे का और एक किसान का वाकया है, क्योंकि उन दोनों की कहानी आज हम सब के लिए क्या है जी, गवाही है, ताकि उस गवाही के वसीला से हम सीख सकें, याद रख सकें कि खुदावंद खुदा क्या करता है, हम सब की जिंदगियों पर नजर करता है। इको काम करें, हम सब की जिंदगियों पर नजर करता है ताकि हम क्या कर सकें जी, बरकत पा सकें। तो मेरे साथ जो बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं वो निकाले अब्रानियों के नाम, पालूस रसूल का खात, अब्रानियों का खात, उसका 11 बाब उसकी पहली 4 आयात को हम देखेंगे। और यहां पर हमें खुदा के कलाम में यूं मिलता है, अब ईमान अमीन की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना हुआ। ईमान ही से हाबल ने काहिन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी और अगरचे वो मर गया है तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आदम के दो बेटों का वाक्या मिलता है पदेश 4 बाब में, काहिन और हाबल। जरा अपने बच्चों को संभाल लीजिए, एक किसान और दूसरा चरवाहा। और आज मैं चाहता हूं कि जिस बात पर गौर की जाए, खुदावंद खुदा अपनी किताबे हयात में हर फर्द बशर के लिए रिकॉर्ड रखता है और वो हर फर्द बशर को नाम बनाम जानता है। जैसे जैसे यसाया उसके 40वें बाब में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि आसमान का कोई भी सितारा, कोई भी अजरामे फलक जो खुदा ने तैयार किया है, उनमें से वो हर एक को नाम बनाम जानता है। सो आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, खुदा आपको आपके नाम से जानता है, वो आपके नाम से वाकिफ है कि आपका क्या नाम है, आप कहां पर रहती हो, कहां पर रहते हो, और आपकी पूरी जिंदगी का बायोडाटा उसके पास है। सो आज इस यादगारी की इबादत में चाहता हूं मैं हाबल के जिंदगी पर गौर करवाना, क्योंकि दो भाई एक रास्तबाज एक नाराज, एक खुदा की नजर में मकबूल हुआ, एक खुदा की नजर में नामकबूल हुआ। So, हकीकी सवाल आपसे और मुझसे खुदा का कलाम कर रहा है कि हम कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्या हमारे बारे में खुदा गवाही देगा, क्या हमारे बारे में खुदा अपने रिकॉर्ड में यह कहने वाला बनेगा, ठीक जैसे अय्यूब 1 बाब उसकी 6 आयत में, अय्यूब 2 बाब उसकी 1 आयत में और खुदा के हजूर में शैतान आया और उसने खुदा ने पूछा कि क्या तुमने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर गौर किया है। फिर कहूंगा खुदा हमें नाम बनाम जानता है, हमारा नाम क्या है, हम किस मुल्क में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, हमारी उम्र क्या है, हमारे दिन क्या है, हमारा रंग क्या है, और वो हमारी हर एक बात से। तो शैतान से खुदा पूछता है कि क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब पर नजर की है, क्योंकि उसके बारे में लिखा है कि वो कामिल रास्ता खुदा से डरता बदी से दूर रहता है और उस जैसा कोई और नहीं। और यहां पर भी ऐसे ही लिखा है, जब हम हाबल की जिंदगी को देखते हैं कि हाबल ने अपने भाई काहिन से افضل قربانی خدا کے حضور گزرانی جس کی بابت خدا کیا کرتا ہے جی، راز باز ہوتے ہوئے اس کی گواہی دیتا ہے۔ یاسر ہم سب کو چھوڑ کر اس جگہ پر چلا گیا جو اس کے لیے خدا نے مقرر کی تھی۔ جتنی زندگی اس نے گزاری اس نے گزار دی۔ اب اس کی موت کی بابت آپ سب پر جو بات عیاں کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک جیسے حابل کی گواہی دی جا رہی ہے کہ اس کی زندگی خدا کی حضوری میں کیا ٹھہری جی، مقبول ٹھہری۔ کاہن کی زندگی خدا کی نظر میں کیا نہیں ٹھہری جی، مقبول نہیں ٹھہری۔ اس نے اپنی قربانیوں سے، اپنے ہدیوں سے، اپنی زندگی کے طور طریقہ سے کیا کیا، خدا کو خوش نہیں کیا۔ اور اس کے کام میں نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے، اپنے بھائی کو مارتا ہے، اور خدا کے حضور سے وہ کیا ہے جی، نکالا جاتا ہے اور خانہ خرابی کی وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہمارے پاس دو چناؤ ہیں، ایک خدا کے پر کے ہی خدا کے پر کے نیچے رہنا، دوسرا خدا کی حضوری سے بھاگنا۔ سو حابل کیا ہے جی، ہم سب کے لیے گواہی ہے کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، ایوب کے بارے میں خدا نے گواہی دی، ابراہیم کے بارے میں خدا نے گواہی دی، اور پھر موسیٰ کے بارے میں گواہی دی۔ ابراہیم کو کہا کہ وہ میرا کیا ہے جی، اچھا دوست ہے۔ ابراہیم کے بارے میں جب ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں 18ویں باب میں، وہاں پر لکھا ہے خداوند خدا کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں صدوم اور مورا میں کچھ کام کروں، کیا میں اپنے بندہ ابراہیم سے اسے پوشیدہ رکھوں۔ خدا ابراہیم کو اپنا دوست کہتا ہے، خدا موسیٰ کو اپنے خاندان میں، اپنے آسمانی اور زمینی خاندان میں سب سے زیادہ حلیم جانتا ہے۔ خدا داؤد کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ میرا من پسند بندہ ہے۔ پالوس کے بارے میں کہتا ہے وہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ ایوب کے بارے میں کہتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور زمین پر ہے ہی نہیں، جو کامل، جو راستہ، جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو۔ حابل کے بارے میں کیا کہا ہے خدا نے کہ وہ آج بھی اگر وہ مر چکا ہے تو بھی اس کی موت کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے۔ وہ آپ سب کا، میرا نام جانتا ہے، ہر ایک ستارے کا، ہر ایک چرند کا، ہر ایک پرند کا، اور جتنے زمین کے نیچے ہیں، کیونکہ وہ خالق خدا ہے، وہ سب سے واقف ہے۔ تو یاسر اپنی زندگی گزار چکا، لیکن اب سوال جو یادگاری کے طور پر ہم سب کے لیے نور کا اشتہار ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہماری بابت خدا گواہی دے گا، ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہماری نظریں، ہماری زندگی جو اس بات کی تصویر ہے کہ ہم کس طرح گزار رہے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ، اس پر ہمیں غور کرنی ہوگی، کاہن اور حابل کی کہانی ہم سب کے لیے، چرواہے اور کسان کی کہانی اسی لیے لکھی گئی ہے تاکہ ہم جانیں کہ انہوں نے کس طرح زندگی بسر کی۔ نوح کے بارے میں لکھا کہ ایمان ہی کے سبب سے اس نے خدا کے کہے کے مطابق زندگی بسر کی۔ ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے ایمان ہی سے اپنے بلائے جانے پر خدا کے حکم کی تابع داری کی۔ پھر ہم ایمان ہی سے دیکھتے ہیں کہ سارا نے جب وہ بڑھاپے میں تھی، خدا نے اس کے رحم کو بھرا۔ ایمان ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جب آزمایا گیا تو اس نے نافرمانی نہیں بلکہ حکم کی تابعداری کی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے سے نہ ٹلا۔ ایمان ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق نے کیا کہا کہ اپنے بیٹوں کو دعا دی اور برکت دی۔ ایمان ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے باپ نے اسے مرنے سے پہلے کہا کہ میری ان ہڈیوں کو تو کیا لے کے جانا اس جگہ پر جو ہمارے باپ دادا نے قبرستان خریدا ہے، وہاں پر جا کر ان کو کیا کرنا جی، دفنانا۔ ایمان ہی سے ہم آگے دیکھتے ہیں موسیٰ کے ماں باپ نے فرعون کے حکم کی تابعداری کی بلکہ نافرمانی کی اور موسیٰ کو 3 مہینے تک چھپائے رکھا۔ ایمان ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے بادشاہ کی बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया, किसके लिए? मसीह के लिए। ईमान ही से हम देखते हैं, आगे लिखा है कि यरू की दीवार गिर गई। ईमान ही से हम देखते हैं कि बहरे कुलसम जिसे दरियाए नील कहते हैं वो दो तई हो गया। और खुदा का कलाम कहता है अब्रानियों 11 उसकी जब हम 32 आयत को पढ़ते हैं, और अब क्या कहूं, इतनी फुर्सत नहीं के जलोन और बराक और सुलसून और इफ्ता और दाऊद और सैमुएल और नबियों का हवाल बयान कर। आज भी अगर जे हावल मर चुका है, खुदा उसकी मौत के वसीला से कलाम करता है। अब पौलुस रसूल कहता है रोमियो 12 बाब उसकी पहली आयत में, ए भाइयों और ए बहनों, ऐ भाइयों मैं खुदा की रहम से याद दिलाकर तुमसे तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही हमारी क्या है जी, माकूल इबादत है। सो ये तो इश्तहार हो गया खबरदारी का हम सब के लिए, और सवाल इसमें है हम कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब तसल्ली की बात करना चाहता हूं। पहला तसल्ली की उसका 4 बाब उसकी 13 आयत से जब हम 18 आयत तक पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल यीशु मसीह की आमद सानी के बारे में कहता है कि जब उसकी आमद होगी, जब वो अपने कॉल के मुताबिक वापस आएगा, ठीक जैसे उन गलीली नौजवानों को जब यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते, इमाम पहले बाब की 11वीं और 12वीं आयत में देखते हैं दो सफेद पोशाक बरक कपड़े पहने हुए आदमी उनमें आ मौजूद हुए, और वो फरिश्ते उनको क्या कहते हैं कि ऐ गलीली नौजवानों, जिस तरह तुमने यीशु को आसमान पर जाते देखा है वैसे ही वो वापस आएगा। So, उसकी आमदेसानी के बारे में हम सबके लिए क्या है जी, 13वीं आयत में लिखा है पहला तसल्लीकियो, ऐ भाइयों हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानत जो ना उम्मीद है काम ना करो। औरों की मानत क्या ना करो जी, काम ना करो। बाइबल मुकदस में बहुत दफा जो लफ्ज परायों का, औरों का, गैर अकवाम का या उनका जो खुदा के हम मिरास या उसके खरीदे हुए नहीं या जिन्होंने उस तोहफे को कबूल नहीं किया, ये उनकी तरफ इशारा है जिन्होंने यीशु का इनकार या अभी तक उस रफान तक नहीं पहुंचे। सो औरों की मानत, उन नाबीद लोगों की मानत ना बनो, क्योंकि हमें यकीन है कि यीशु मर गया। किस किस को यकीन है कि यीशु मरा था जी, बाकी है सबको यकीन है यीशु मरा। आज आपको एक बड़ा झूठ मिलेगा कि यीशु मरा नहीं, जी हां वो मरा था, यीशु मर गया। और आगे क्या लिखा है, जीव था तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं मसीह के साथ यीशु के साथ अपने साथ ले आएगा। हम सब मसीहियों की बुनियाद क्या है, यीशु मसीह मसलूब हुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो वापस आएगा और हर एक को उसके काम के माफी क्या देगा जी, अजर देगा। तो हम सब की हिस्ट्री यीशु मसीह के पास है कि हम किस तरह जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या आप और मैं चाहते हैं कि हमारी कब्र की तख्ती पर लिखा जाए 2018 में पैदा हुआ और 2038 में वफात पाई, और जब किताब खोली जाए तो उसमें यही हो कि ये पैदा हुआ और फौत हुआ और बाकी कोई रिकॉर्ड ना मिले। हमें रिकॉर्ड मिलता है काहिन का और हावल का कि उसने कुर्बानी की, खुदा ने उसकी कुर्बानी और हदीये को नामंजूर किया। हावल ने कुर्बानी की, खुदा उसके हदीये से खुश हुआ, तो भी वो मर गया है। आज हम सबसे कलाम करता है कि हम ऐसी जिंदगी बसर करें जो इस ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आने वाले जहान में भी क्या लिखी जाए जी, यादगारी के तौर पर। तो जब मुर्दे जिंदा हो गए यीशु मसीह जब वापस आएगा तो हर एक को क्या है जी, उनके माफ कामों का माफी क्या मिलेगा जी, बदला मिलेगा। दो दांतें होगी, एक गैर ईमानदार होगी और उनका हाल क्या होगा, वो आग की झील में जिसे दूसरी मौत कहते हैं डाले जाएंगे, और ईमानदारों की अदालत में वो यीशु के कब्र के सामने खड़े होंगे और हर एक अपने काम के मुआफिक बदला पाएगा। किसी को 5 शहरों पर, किसी को 10 शहरों को, किसी को खाने का शरफ, किसी को वो पोशीदा मान, किसी को वो पत्थर जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है, किसी की तहरीर लिखी जाएगी इस आसमानी में, और किसी को सफेद पोशाक पहनने को, किसी को रास्तबाजी का तार, किसी को नाम उठाने वाला सेहरा, किसी को जलाव का सेहरा, किसी को वो सेहरा जो सेहरा है जिंदगी का ताज। और ये सब कुछ मिलेगा, वो इसलिए मिलेगा ताकि जब हम यीशु के सामने खड़े हों और 24 बुजुर्गों की तरह जो आकाश का 6 वाक्य में जिक्र मिलता है, वो बगड़े के सामने झुके और उन्होंने अपने ताजों को खुदावंद खुदा के हुजूर उतार कर सजदा किया। हम जब यीशु के सामने खड़े होंगे तो सवाल ये है कि उसे पेश क्या करेंगे। जैसे अभी अभी गीत में गाया था, हमारे जो ईमान है वो ही हम उसको साथ लेकर जाएंगे, जो हम सबको उसका बदला मिलेगा वो क्या हो सकता है, आज 5 शहरों पर हुक्मरानी, 10 शहरों पर हुक्मरानी या फिर कोई और दर्जा। सहाबा मर गया लेकिन उसके वसीला से खुदा आज भी कलाम करता है, इसलिए मैं चाहता हूं आप सबको याद दिलाना। पौलुस कहता है चुनांचे हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदा के आने तक बाकी रहेंगे सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदा खुद आसमान से दरकार और मुकरम फरिश्ते की आवाज और खुदा के तरसीदा के साथ उतरेगा। पहले तो वो जो मसीह में हुए हैं जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और हवा में उसका क्या करेंगे जी, इस्तकबाल। और नसमा का गीत याद है, हवा जी उड़ जाना है यीशु ने जदों आना है, इसलिए हवा में वो ही उड़ेंगे जो उसके मरने, दफन होने और जी उठने और आने की अमीद में है, क्योंकि यही हम सब मसीहियों की बुनियाद है, यही वो कोने का बुनियादी पत्थर सच्चाई सतून है। और इसीलिए पौलुस रसूल कहता है तुम एक दूसरे को क्या दो जी, तसल्ली दो, तसल्ली दो। तो आज इबादत खत्म करने से पहले हकीकी तौर पर इस बात पर सोचें कि जब हमारी किताब खुलेगी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, मलाकी नबी के सहीफे के मुताबिक अभी जो इबादत हम कर रहे हैं खुदा की हजूरी में लिखी जा रही है, मकाशवा की किताब के मुताबिक अभी जो कुछ हो रहा है उसका रिकॉर्ड यीशु मसीह के पास है, और वो दुनियावी कंप्यूटर नहीं कि जिसे कोई हैक कर लेगा और उसमें से डेटा तब्दील कर लेगा, जैसे बहुत दफा नाम बदलने के लिए दरख्वास्त दी जाती है कि मेरा नाम बदलो नाम वाले या कोई और जगह पर डेटा बदलना हो तो क्या करते हैं जी, रुपया पैसा देकर तब्दीली कर लेते हैं। आसमानी कंप्यूटर में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मूसा ने दरखास्त की थी जब खुदा उन पर कहर करने वाला था, उसने कहा कि अगर तू सब इसराइलियों को यहाँ पर बियाबान में तबाह बर्बाद कर देगा तो मिस्री कहेंगे कि इनका खुदा कैसा है, इनको बियाबान में लाकर मारता है। और खुदा का बंदा मूसा इल्तिजा और मिन्नत करते हुए खुदा के सामने कहता है कि अगर तू इनको फना करना चाहता है तो मेरा नाम उस किताब में से निकाल दे। तो आसमान पर एक किताब है जैसे बाइबल मुकद्दस, तमाम लोगों का और गवाहों का क्या है जी, सबूत है जिन्होंने जिंदगी बसर की। हम सब के लिए भी कोई ना कोई किताब है और सवाल यह है कि वो किताब कितनी बड़ी होगी। जो कुछ हम इस जमीन पर करेंगे उस किताब में जैसे जैसे लिखा जाएगा वर्गों को उसमें दर्ज होते जाएंगे। हो सकता है कई लोग उनकी जब किताब खोली जाए, फरिश्ते जब हिसाब करें, जैसे ठीक हमें पता चलता है अमीर आदमी और गरीब नासर के बारे में, फरिश्ते ले जाकर जब उनका हिसाब किताब, जब उनके साथ गुफ्तगु हो रही है, तो कईयों की तो किताब खुलेगी और उस किताब में हो सकता है यही लिखा हो, पैदा हुआ और दफन हुआ और उसने मसीह को नहीं कर दिया। बहुत से लोगों के लिए लिखा होगा 20 साल की जिंदगी गुजारी, उसमें इतनी देर तक इसने खुदा की इबादत की। हो सकता है बहुत ऐसे हो जिनकी सारी हिस्ट्री को उसने बयान किया हो कि किसने क्या क्या किया, क्या क्या किया और कितनी दफा इसको निजात का पैगाम दिया, लेकिन इसने उसे कबूल नहीं किया। तो ये खौफनाक बात आप तक पहुंचाने का मकसद क्या है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हमारी जब किताब खुली जाएगी तो उसमें क्या मिलेगा। पहली बात याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी किताब में क्या होना चाहिए। मुझे अपने यकीन से मैं कह सकता हूं 1982 में पैदाइश हुई और अगर खुदा मुझे आज यहां से 10 साल या 100 साल या 50 साल बाद बुला दे तो मेरे पहले वर्गे पर यह लिखा होगा कि इसने खुदावन यीशु मसीह को जब निजात का पैगाम दिया गया तो इसने उसे कबूल किया और उसके बाद फिर मेरी तारीख शुरू हो जाएगी कि मैंने क्या क्या मसीह के लिए किया ताकि उसके मुआफिक मुझे क्या मिले। जी अच्छा, आप सब के लिए भी यही है, अगर अभी तक आपने यीशु को अपना दिल नहीं दिया तो आज मौका है। ऐसा ना हो कि किताब खोले और सिर्फ यही लिखा हो पैदाइश 1960 में हुई और 1998 में वफात पा गया और आगे पीछे कुछ जिक्र ना मिले कि इसने क्या किया और कैसे जिंदगी गुजारी। आप उनके लिए खुदा गवाही देता है, हम सब के लिए गवाही होगी उसके तख्त अदालत के सामने। सो इस पर थोड़ा सोचें और हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। ज़बूर 147 में लिखा है खुदा खुदा मुझे जांच और पहचान और मेरी तफ्तीश और क्या कर जी सर्च कर, जांच और पड़ताल कर और मुझ में देख कोई ऐसी बुरी रविश तो नहीं जिससे तू खुदा खुदा ना खुश हो। सो आए हम खुदा के सुन चुके और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे मैंने फौतगी के दिन याद दिलाया था कि यासर की बीवी उसके लिए वसीला बनी कि एक दिन यासर को लेकर आई मेरे पास और उसने कहा कि अगर मैं मर गई तो मुझे पता है कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, मेरे खामन का क्या बनेगा। मैंने उसे बताया कि उसके लिए निजात के पैगाम को कबूल करना जरूरी है क्योंकि यासर मसीही खानदान में सैफुल मसीह का बेटा कहलाते हुए मसीही फैमिली में तो पैदा हुआ है लेकिन अभी तक मसीही नहीं जब तक उसने उसे कबूल नहीं किया। इस सोच को अपने जहन में उतार दें, हर एक मसीही खानदान में पैदा होने वाला मसीही नहीं जब तक वो मसीह को कबूल नहीं करता। मैंने अपने पहले 16 साल बुत परस्ती में, कब्रों पर, जादूगरी में, तबीज भागों में और दूसरी बातों में गुजारे और 16 साल की उम्र में जाकर यीशु को अपना निजात का कबूल किया। क्या राहिब का भाई हाबर रास्तबाज नहीं कहा गया बाइबल मुकद्दस में और काहिन को क्या कहा गया है नारास्त। किसके बेटे थे दोनों जी आदम के, किसके बेटे थे जी आदम के, लेकिन आदम क्या था खुदा का बनाया हुआ, खुदा का वो बंदा जो बागे अदन में रहता था उससे सुनता था कलाम करता था। क्या दोनों ही रास्तबाज थे? नहीं, एक रास्तबाज और एक नारास्त। हमारे साथ भी वही के साथ हमारी हो सकती है। यहूदियों का सरदार निकोदीमस कितना इल्म रखता था? बहुत ज्यादा। क्या वो नए सिरे से पैदा हुआ था? क्या हर एक यहूदी यीशु पर ईमान रखता है कि उनका मसीह है? नहीं। इसलिए हर एक मसीही ने अभी तक यीशु को अपना नजात दहिंदा शख्सी तौर पर हो सकता है कबूल ना किया हो, इसलिए याद रहे कि यीशु पर सादा तौर पर हम यकीन कर सकते, कह सकते हैं कि तू इस दुनिया में मेरे लिए आया, मसलूब हुआ, कब्र में उतारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मैं तेरे आने की उम्मीद में हूँ ताकि जब तू आए तो मैं मुर्दों में से जी उठ कर तेरा इस्तकबाल करूंगी और करूंगा। ये सादा सा मसीही ईमान का क्या है जी? खुलासा है, क्योंकि कोई और चीज हमें निजात दे नहीं सकती, कोई और हमें बचा नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो फिर यीशु मसीह को ना पैदा होने की जरूरत थी, ना फिर उसे मरने की जरूरत थी। समय हम खुदा के जुड़ चुके हैं और इस सुने हुए कलाम पर जरा गौर करें ताकि जब हमारी किताब खोली जाए तो उसमें कितने वर्के मिलेंगे, उसमें क्या क्या मिलेगा, ये आप और खुदा के दरमियान है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको हिम्मत और तनाई दे ताकि हम इस भूल में ना रहें कि मेरा नाम पत्रस मसीह है और मैं अपने नाम की खातर और अपने नाम के बायस हमेशा की जिंदगी की वारस बन सकती हूँ या बन सकता। तूने कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद आज सबको बड़ी बरकत दे, तेरे शुक्र गुजार है कि तेरे कौल और तेरे वादे सच्चे हैं। तूने पालूस पर यह भेद जाहिर किया कि जब हम बदन के वतन से आप चपकते ही रुखसत होते हैं तो हम उस आसमानी वतन में मुंतकिल कर दिए जाते हैं जहां से हम चला वतन है। खुदावंद तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूं कि तूने कहा कि क्यामत और जिंदगी मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हाँ वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। खुदावंद तूने फरमाया कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन तेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और तूने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं कह देता और मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और जब वापस आऊं तो तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, जहां मैं हूं तुम भी होगे। अब तेरे तमाम वादों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, यासर के लिए जो उस जलाली हालत में है तेरा शुक्र करते हैं, इसलिए नहीं कि उसने कोई नेक या कोई और आला काम किया बल्कि सादा तौर पर तेरे बेटे को अपना मनजी यीशु मसीह कबूल किया ताकि वो दोजक की आग से, ताकि वो दोजक के उस खुदा खुदा कहर से जिसके लिए खुदा खुदा तूने कहा है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। उसके ईमान के बायस खुदावंद तूने उसे अपने आग में बाला पर जगह दी, तेरा शुक्र करते हैं। अब जो बाकी है खुदावंद खुदा इस दुनिया में हम सबको खुदावंद खुदा तेरा कलाम तौफीक दे कि हमारी गवाही जब लिखी जाए तो वो इन लफ्जों में ना लिखी जाए कि काहिन उस शरीर से था जिसने अपने भाई को क्या किया, कत्ल किया और वो जमीन पर खाना खराब हुआ, बल्कि खुदा खुदा तेरे कलाम के मुताबिक हम हाबिल की तरह खुदा खुदा गिने जाए कि उसकी जिंदगी की कुर्बानी और नजरें और तमाम काम जिसको तू आज भी इस्तेमाल करता है कि गवाही हो और कलाम
सब कुछ बड़ी बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ मांगता हूं।